ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद् गीता सातवां अध्याय बीसवां श्लोक कामैः तैः तैः हृता ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्या देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के हेतु हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पण करे और उनकी पूजा करे, वह चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में दूसरे स्कंद तीसरे अध्याय दसवें श्लोक में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निरंतर निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि कुछ कार्यों के लिए देवता भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। अनुवाद को दोहराइएगा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। तो पिछले 2-3 प्रवचन देवी देवताओं के बारे में हम कर रहे हैं और इसी विषय को आज भी आगे बढ़ाते हैं। भारतवर्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो भी लोग थोड़े बहुत धार्मिक हैं, नास्तिक लोगों की संख्या तो बढ़ते जा रही है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत धार्मिक लोग बचे हैं उनमें से अधिकतर लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए होते हैं। इसलिए इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझना बड़ा आवश्यक है, अपनी स्वयं की श्रद्धा के लिए, अपनी कृष्ण भक्ति की निष्ठा को बढ़ाने के लिए और अन्य लोगों को समझाने के लिए जो कि शायद हमारे साथ प्रश्न करने आए या बहस करने आए, तो उन्हें हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं शास्त्रों के आधार पर। इन सारे कारणों से हमें इस विषय को समझना और भगवद गीता में जो भी अन्य विषय हैं उनको अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें ध्यान से ये भगवद गीता यथारूप को पढ़ना चाहिए रोज और प्रवचन में आके बैठना चाहिए, ताकि हमारे मन में ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। तो यहाँ श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोग देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। कामैस्तैस्य हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनका हृदय काम से भरा हुआ है वही जाते हैं। यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है अन्य देवता, और एक श्लोक में भी भगवान इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये चन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। वो कहते हैं कि जो लोग मेरा शरण न लेते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और श्रद्धा से उनकी उपासना करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वकम्, अर्थात गलत ढंग से करते हैं। मेरी पूजा वास्तव में इस तरह से नहीं की जाती है, मेरी पूजा देवताओं के माध्यम से नहीं की जाती, मेरी पूजा मेरे शरण में आने से होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां भी बताया है अन्य देवता। लोग मानते हैं ये भी देवता है वो भी देवता है। भगवान ने कई जगह गीता में स्पष्ट कह दिया है कि मैं भगवान हूं, तो देवता की बात नहीं है। अर्जुन भी कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम, कि हे भगवान आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं आप भी। तो इस प्रकार से भगवान खुद भी घोषणा करते हैं और अर्जुन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। और यहां पर भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं अन्य देवता, मतलब वो भी देवता हैं और अन्य देवताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण भी एक देवता है। अन्य देवता का मतलब है कि अन्य कोई व्यक्ति हैं जिनकी पूजा लोग करते हैं, इस दृष्टि से यह शब्द अन्य देवता का प्रयोग किया गया है। तो ये समझना जरूरी है कि ये देवता लोग कौन हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि देवता गण जो हैं वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। जैसे सरकार के अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं जो सरकार का काम संभालते हैं और सारे देश को चलाते हैं, उसी प्रकार से ये देवी देवता जो हैं ये भगवान के ऑफिसर हैं और भगवान का कार्य संभालते हैं इस सारे ब्रह्मांड में। तो ये सवाल आता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मांड को सीधे संभाल नहीं सकते? देवी देवताओं को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? अब जब देवी देवता बीच में आ जाते हैं तो लोग देखते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि कौन भगवान है। अगर देवी देवताओं को बीच में लाया ही नहीं होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, एक ही है भगवान, कृष्ण ही है बस। तो फिर देवताओं को, वो भी 33 करोड़ देवता, एक दो नहीं, तो जो भ्रमित होने के लिए भगवान ने काफी स्कोप रखा है। जैसे किसी दुकान में आप जाते हैं, अगर 2-3 वैरायटी हो तो आपको चुनना पड़ता है 2-3 वैरायटी में से। समस्या ज्यादा बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि 1000 वैरायटी है, तो कौन सा चुनना है। तो उस प्रकार से प्रश्न ये आता है कि भगवान ने देवताओं को बनाया ही क्यों है? क्या वो समर्थ नहीं है सारे ब्रह्मांड को संभालने के लिए? क्या उनको देवताओं की आवश्यकता है ये सब करने के लिए? उत्तर तो ये है कि भगवान को देवताओं की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, देवताओं को उनकी आवश्यकता है। पहली बात ये है कि भगवान अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में, अपने भक्तों के साथ में लीला करते हैं, उनको यह भौतिक ब्रह्मांड में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्य लीला का प्रदर्शन वहां करते हैं उनके भक्तों के साथ में, और वहां पे सच्चिदानंद धाम में रहते हुए, चिन्मय जगत में रहते हुए, वो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं लेते हैं, और एक कदम लेते भी हैं तो अपने विस्तारित रूपों के माध्यम से लेते हैं, जैसे विष्णु हैं, बलराम इत्यादि अन्य जो उनके अवतार हैं, उनके माध्यम से वो वृंदावन के बाहर जाते हैं। अन्यथा श्री कृष्ण, श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण जो है, वो गोलोक वृंदावन के एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर ये ब्रह्मांड के कार्य संभालता कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि वास्तव में सब कुछ उनके ऊपर स्थित होता है, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें स्थित है। यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानि त्युपधारय। एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से आकाश बिल्कुल अनंत है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, और आकाश में वायु स्थित है। वायु कहां तक जाता है ये आकाश में सीमा है वायु की, लेकिन आकाश के लिए कोई सीमा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से वायु आकाश में स्थित होता है, उसी प्रकार से सारे जो जगत है, अनंत कोटि जगत है, और जो भी प्राणी हैं वो उनमें स्थित हैं। मत्थानि उपधारय, सब सारे मुझ में स्थित हैं। और फिर आगे चल के बताते हैं कि वास्तव में ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं वो उन्हीं से आते हैं, सब कुछ उन्हीं में स्थित होता है, और आखिर में उन्हीं में सब समेट कर फिर से भगवान इन सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बाहर निकालते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि प्रकृतम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। वो कहते हैं कि ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनको मैं बार बार विसृजामि, मैं इनका सृजन करते रहता हूं, और फिर बार बार कल्पादो विसृजामि हम, जैसे ये खत्म हो जाता है तो फिर से मैं उनका सृजन करता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। कहते हैं जब कल्प का अंत होता है, ब्रह्मांड का अंत होता है, तो सब कुछ मुझ में आ जाता है, और कल्प आदो फिर अगले सृष्टि की शुरुआत में फिर सब कुछ चीज मुझसे बाहर आती है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में स्थित हैं, सृजन मुझसे होता है, पालन पोषण मुझसे होता है, और नाश होकर फिर वो मुझसे मेरे अंदर आ जाते हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी भगवान क्या कहते हैं? नचमा ताने कर्माणि न बधनंति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। वो कहते हैं मैंने ये बता दिया अर्जुन कि सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में स्थित होते हैं, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं इन कार्यों में उलझ गया हूं। जैसे कोई आदमी अगर फैक्ट्री कारखाना कोई खोल लेता है तो एक कारखाने को चलाना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे सुबह से शाम, सुबह से रात तक रहना पड़ता है, रात को भी कारखाने के बारे में चिंता होती है, कितने सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति पूरी तरह से उस कारखाने में उलझ जाता है। तो ऐसा न हो कहें कि हम समझें कि कृष्ण ने इतनी बड़े, इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण किया है तो वो कितने उलझे होंगे ब्रह्मांडों को संभालने में। तो भगवान बताते हैं ऐसा नहीं है। न च माम ताने कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, कि हे धनंजय, मैं इन सारे कार्यों से बंधा नहीं जाता। मैं क्या हूं? उदासीनवत, मैं उदासीन हूं। उदासीन मतलब इन्हें कोई संबंध नहीं है, मैं दूर अपने मस्त हूं अपनी जगह में, सब चला रहे हैं। उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं असक्त निरासक्त हूं इन सब चीजों से। अब भगवान निरासक्त हैं, उदासीन हैं, तो ब्रह्मांड चला कौन रहे हैं? खुद भगवान जवाब देते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन थे जगत के परिवर्तते। मैं खुद नहीं करता हूं ये अर्जुन, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता के अनुसार ये सब चल रहा है हे अर्जुन, मैं खुद आके नहीं करता हूं। जैसे बड़े कोई कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन होता है वो खुद जाकर मशीन चलाता नहीं है, वो तो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं अपने धाम में, और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनका सारा कार्य संभालते हैं भौतिक ब्रह्मांड में। उपनिषदों में बताया जाता है कि भगवान के अनंत शक्तियां हैं, परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान के विविध प्रकार के शक्तियां होते हैं और वो अलग उनके सारे जो भी कार्य हैं वो संपन्न कर देते हैं। उनकी शक्तियां खुद उनको करना नहीं पड़ता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कृष्ण का स्वभाव ही है ज्ञान होना, ज्ञान से पूर्ण होना। कृष्ण का स्वभाव है बल से पूर्ण होना, और कृष्ण का स्वभाव है क्रियाशील होना। मतलब जब अगर भगवान को कोई कार्य संपन्न करना है तो केवल उनको सोचना पड़ता है, बस कार्य संपन्न हो जाता है। उनको भागदौड़ नहीं करना पड़ता, किसी सरकार से जाके परमिशन परमिट नहीं लेना पड़ता, कहीं जाकर टैक्स नहीं भरना पड़ता, फॉर्म भरना नहीं पड़ता है। भगवान सोचते हैं कि ये काम हो जाए, हो जाता है। उनकी जो अनंत शक्तियां हैं भगवान की इच्छा को समझ लेते हैं और तुरंत उनकी इच्छा का पालन करते हैं, ये है भगवान। तो इसलिए ये सारे शक्तियां ये देवता और सारे ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने देवताओं को प्रदान किए हैं ब्रह्मांड को चलाने के लिए। लेकिन देवता भी अपने आप नहीं चला सकते उनको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो हर देवता के हृदय में भी प्रवेश करता हूं परमात्मा के रूप में, और उनको अंदर से मैं प्रेरणा देता हूं, मार्गदर्शन करता हूं। ये भौतिक ब्रह्मांड के हर एक अणु में मैं प्रवेश करता हूं, और इस प्रकार से अणु से लेकर ब्रह्मांड तक मैं सबको संभालता हूं। लेकिन जिनकी दृष्टि नहीं है वो इस बात को समझ नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर एक अणु में है, हर एक प्राणी के हृदय में है और सारे ब्रह्मांड के आत्मा के बराबर है। तो इस प्रकार से ये देवता जो है ये भगवान श्री कृष्ण का कार्य संभालते हैं, क्योंकि भगवान को ये भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान उदासीन है, निरासक्त है, अपने धाम में अपनी लीला करते हैं, इसलिए वो आकर यहां पर भौतिक ब्रह्मांड को चलाने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए उन्होंने वो देवताओं को चुनकर उनको भेज देते हैं। तो ये पहला कारण है। अब आप जानते हैं कि आप सब भक्त हैं, मंदिर में आते हैं, और भी कितने सारे भक्त हैं यह राधा गोकुलानंद मंदिर में। तो भक्तों के लिए क्या आवश्यक है? सेवा। भक्तों को सेवा में तो लगाना चाहिए ना। इसलिए अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा दी जाती है कि ठीक है आप पूजा कीजिए, आप मंदिर सफाई कीजिए, आप भोजन बनाइए, आप मंदिर के खर्चों का खाता वगैरह आप देखिए। तो इस प्रकार से भक्त बनना मतलब सेवा में लग जाना। जब तक सेवा में नहीं लगते तब तक भक्त कहां से हुए हम? तो सेवा आवश्यक होता है और भक्त की इच्छा भी होती है कि मैं कुछ भगवान की सेवा करूं। अभी ऐसा नहीं है कि सारे भगवान के भक्त जो भी ब्रह्मांड में हैं वो पूरी तरह से शुद्ध भक्त हैं। अगर शुद्ध भक्त होते तो फिर ये भौतिक ब्रह्मांड में नहीं होते, भगवान के धाम में चले गए होते। लेकिन जो यहां भौतिक ब्रह्मांड में रह चुके हैं, अभी हैं यहां पर, उनको भी तो सेवा में लगाना है, धीरे 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 उनको शुद्ध करना है। तो भगवान देखते हैं कि ये मेरे जो भक्त हैं इनको किसी न किसी प्रकार से मेरी सेवा में लगाना है। तो कैसे लगाएं? ठीक है, इनकी पुण्य कर्म किए हैं इन्होंने, तो पुण्य कर्म का फल है इनको एक ऊंचा पद दे देते हैं, और पद देने से हम इनको सेवा में लगा सकते हैं और मेरे तरफ से मेरे प्रतिनिधित्व करते हुए ये सारे ब्रह्मांड को संभाल सकते हैं। इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड के कार्य को बांट देते हैं सबके बीच में, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। जैसे यहाँ पर भी हर एक मंदिर में हम देखते हैं कि अलग अलग भक्तों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो सन्यासी होते हैं वो मैनेजमेंट में इतना नहीं पढ़ते हैं। सन्यासी का असली काम क्या है? भजन करना। और अन्य जो भक्त आते हैं वो सेवा में लग जाते हैं। जैसे कृष्ण का असली काम क्या है? गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाकर गायों को चराना और गोपियों के साथ में रासलीला करना और फिर मक्खन चोरी करना, यह कृष्ण का काम है। इसलिए वो ये संसार के मैनेजमेंट में शामिल नहीं होते हैं। जिस तरह से यहाँ सन्यासी जो है वास्तव में मैनेजमेंट में इतना शामिल नहीं होते, लेकिन अपने भजन में मस्त रहते हैं। हाँ, प्रचार की संस्था में करना आवश्यक रहता है कभी कभी, जैसे प्रभुपाद जी को करना पड़ा, वो मंदिर चलाने में, अपनी संस्था को चलाने में मैनेजमेंट में बहुत देखभाल किया करते थे। लेकिन कहने का मतलब है कि अलग अलग सेवा दिए जाते हैं सारे भक्तों को, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी इन सारे भक्तों को सेवा में लगा दिया है। अलग अलग ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बना दिया, इंद्र को उन्होंने वर्षा प्रदान करने वाले बना दिए, और इस प्रकार से अलग अलग चंद्र और सूर्य इत्यादि। ये दूसरा कारण रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को क्यों बनाए। तीसरा कारण भी है और वो ये है कि भगवान के भक्त जो है कभी कभी पूरी तरह से शुद्ध न होने के कारण उनके हृदय में भौतिक भोग करने की इच्छा भी है, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो। थोड़े भक्तों में कम है, थोड़े भक्तों में ज्यादा है, और थोड़े भक्त बिल्कुल शुद्ध हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि सभी भक्तों के सारे इच्छाओं को पूरे करते हैं। शुद्ध भक्त की इच्छा तो पूरी करते हैं ही, लेकिन जो उनके शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्र भक्त हैं, उनकी आध्यात्मिक इच्छाएं तो पूरी करते हैं, साथ साथ भौतिक इच्छाओं को भी पूरी कर डालते हैं। जैसे अगर किसी को नाम सम्मान की इच्छा हो और कृष्ण भक्ति में आ जाता है वो, तो भगवान वो इच्छा भी पूरी कर देते हैं। कृष्ण भक्ति के साथ साथ में उसे बड़ा नाम भी मिलता है, सम्मान भी मिल जाता है, लोग आके उनका सम्मान करते हैं। अगर वो भक्त वास्तव में सिंसियर रहता है तो फिर धीरे धीरे समझने लगेगा कि ये जो मान सम्मान है ये मेरे भक्ति में एक बंधन है। फिर जैसे जैसे उसकी भक्ति में वो परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे मान सम्मान इत्यादि जिन चीजों के लिए वो वास्तव में भक्ति में आया था या जो अन्य हृदय में उनकी इच्छाएं थी वो धीरे धीरे त्यागने लगता है। लेकिन भगवान मौका दे देते हैं उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी, भगवान मौका दे देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक ब्रह्मांड के चलाने वाले जो देवता हैं सारे शुद्ध भक्त नहीं है। इनमें से ऐसे कई भक्त होते हैं, देवता होते हैं, जिनके हृदय में थोड़ी बहुत भोग करने की भावना होती है, तो भगवान उनको ऐसा पद दे देते हैं जहां वो उनका काम भी कर सके और साथ साथ भोग भी कर सके। भोग भी थोड़ा बहुत भोग और भक्ति भी साथ साथ। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको देवता बनना पड़ेगा, इसलिए देवता बनना है तो अभी भोग त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उस भोग के लिए इस जगत का, इस पृथ्वी लोक का भोग त्यागना पड़ेगा। पुण्य एकत्र करने के बाद ही हम ऊपर जा सकते हैं स्वर्ग लोक में। तो इस प्रकार से चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, इंद्र लोक में थोड़ा बहुत स्थूल होता है, और ब्रह्मा जी हैं उनके अंदर सूक्ष्म है। ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, तो सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जो है ये भी एक भौतिक इच्छा है, लेकिन अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान की इच्छा से मिला दिया, इसलिए भगवान ने उनको ये काम दे दिया। वैसे मुझे ब्रह्मांड बनाना ही है, और तुम्हारी भी इच्छा है कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करना चाहते हो, सृष्टि का निर्माण करना चाहते हो, तो ठीक है मेरे लिए कर लो। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको अच्छी तरह से सेवा में लगा दिया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ब्रह्मा जी की भक्ति जो पहले पहले उन्होंने की थी वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता है, गौण भक्ति कहलाता है। गौण भक्ति मतलब थोड़ा मिश्रित भक्ति, भले वो सूक्ष्म क्यों ना हो। तो इस प्रकार से ये तीसरा कारण है कि भगवान सारे देवताओं की इच्छा पूरी करते हैं और उनको ठीक सही जगह में पद देकर उनकी भौतिक इच्छाएं और आध्यात्मिक इच्छाएं दोनों पूरे कर देते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी होता है। खतरा क्या है? खतरा यह है कि भौतिक इच्छा का, भौतिक लाभ का भोग करते करते कभी कभी वो भगवान को ही भूल जाते हैं, जैसे इंद्र के साथ हुआ गोवर्धन लीला में, जैसे ब्रह्मा जी के साथ में हुआ ब्रह्म विमोहन लीला में। तो इस प्रकार से देवता लोग कर रहे हैं इसलिए हमें करना है, ये ठीक बात नहीं है। हमें केवल शुद्ध भक्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए, यही हमारे जीवन में एकमात्र अपेक्षा रहनी चाहिए। तो ये हुआ तीसरा कारण। चौथा कारण भी है कि भगवान ने देवताओं को क्यों बनाया। कोई सोच सकते हैं चौथा कारण क्या हो सकता है? जिस प्रकार से अलग अलग देवताओं की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं भोग करने के लिए, उसी प्रकार से और अन्य कई जीव होते हैं जो देवता बनने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन उनके भी अलग अलग प्रकार के भोग प्रवृत्तियां होती हैं। तो उनके भोग प्रवृत्ति को पूरी तरह से तृप्त करने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं, ताकि एक प्रकार के भोग के लिए आप एक देवता के पास जाओ, दूसरे प्रकार के भोग के लिए दूसरे देवता के पास जाओ। इस प्रकार से 33 करोड़ देव बनाए हैं। तो आप कितने सारे भोग की इच्छाएं रखें, जितने भी आप रखें उतने देवता वहां है। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। वास्तव में जब कृष्ण कथा चलती है तो पर्दा जब बंद होता है तो कृष्ण कथा को नहीं रोकना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि लोग मेरा दर्शन करें अपने कानों से। अगर कृष्ण कथा में रुकावट आती हो तो फिर केवल हम अपने मन से हाथ जोड़कर या सर झुका के कर सकते हैं, और फिर बाद में जब दर्शन होता है तो फिर हम पूरा दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी बात है। तो कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन भागवत विधि का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो क्या कह रहे थे, अलग अलग प्रकार के जो भक्त होते हैं, जो भक्त नहीं जो अभक्त होते हैं, जिनको भोग करने की इच्छा होती है, तो भगवान ने उनको एक प्रकार की सुविधा दी है उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। क्योंकि तीन गुणों से प्रभावित सारे संसार में लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी लोग मुक्ति के इच्छुक हैं या भक्ति के इच्छुक हैं। हर एक आदमी अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहता है। कोई सोचता मैं ऐसे भोग करूंगा, कोई सोचता मैं वैसे भोग करूंगा। तो भगवान ने हर एक प्रकार के भोग के लिए को अलग अलग प्रकार की सुविधा बनाई है। आपको ये करना है, ठीक है ये देवता की उपासना करो। आपको वो करना है, चलो वो देवता की उपासना करो। तो जो भी भौतिक इच्छा है किसी के हृदय में भोग करने की इच्छा, उस इच्छा के लिए या उन इच्छाओं की तृप्ति के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि देवताओं की उपासना ये भगवान की उपासना से अलग होता है। तो खैर ये चार कारण हो गए, महत्वपूर्ण कारण, जिनकी वजह से भगवान ने देवताओं को बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं आपको याद है कि नहीं। पहला कारण क्या है कि भगवान ने देवताओं को बनाया? हाँ, क्यों? चार महत्वपूर्ण कारण हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इतने सारे आप बताते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवता भगवान से अलग हैं, तो फिर भगवान ने देवताओं को बनाया? हाँ, क्यों? चार महत्वपूर्ण कारण हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इतने सारे आप बताते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवता भगवान से अलग हैं, तो फिर भगवान ने देवताओं को बनाया क्यों? तो अभी आप फटाफट ये चार जवाब दे पाएंगे, उनको बिठाकर भाषण दे सकेंगे? ये याद रखिए अभी ये चार पॉइंट, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा और पूजा अर्चना में एक और दूसरी ओर देवताओं की पूजा उपासना में अंतर है कि नहीं? अंतर है। क्यों? क्योंकि देवताओं की उपासना बिल्कुल भौतिक स्तर पर है और भगवान श्री कृष्ण की उपासना आध्यात्मिक स्तर पर है। दोनों धार्मिक हैं, लेकिन सारे धर्म जो है वो आध्यात्मिक नहीं होते। कोई धर्म भौतिक होते हैं, कोई धर्म आध्यात्मिक होते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण से जो धर्म भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, और जो भी धर्म देवताओं देवी देवताओं से संबंधित होते हैं या कृष्ण से जो संबंधित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? भौतिक होते हैं। इसलिए अलग अलग उपासना से हमें अलग अलग फल मिलता है। अन्यत आहुर संभवात, अन्यत एवाहु संभवात, अन्यत आहुर असंभवात इति सुश्रुमधीराणाम येन सद विचक्षिरे। भगवान श्री कृष्ण देवताओं के उगम स्थान है, स्रोत हैं, तो उगम स्थान की सेवा करने से एक फल मिलता है और उगम स्थान से उत्पन्न जो होता है उनकी पूजा करने से अलग परिणाम मिलता है, ये ईशोपनिषद में बताया जाता है। तो देवताओं की पूजा भौतिक है क्योंकि देवता ही भौतिक है, उनका शरीर ही भौतिक है, तो उनकी पूजा करने से फल भी भौतिक ही मिलेगा। और कृष्ण क्या है? वो तो भौतिक नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनके अंदर लेश मात्र भी भौतिक कोई चीज नहीं है। तो जब हम उनकी सेवा पूजा करते हैं तो फल भी आध्यात्मिक ही मिलता है। अब प्रश्न ये आता है कि कोई भौतिक इच्छा लेकर कृष्ण के पास जाए तो फिर क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाओ। देवताओं के जाने के बजाय, उनके पास जाने के बजाय मेरे पास आओ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये चाहे किसी के पास सारे कामनाएं हैं किसी के हृदय में, किसी के हृदय में कोई भी भौतिक कामनाएं नहीं है, या किसी के हृदय में मोक्ष की कामना है, जो भी हो कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, वो आध्यात्मिक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है तो वो तो पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर में स्थित होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मुक्ति के अवस्थार से आरंभ होती है, आत्मा के स्तर से आरंभ होती है, उसमें कोई भौतिक कलमश नहीं होता है। तो अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। पहले है भौतिक धर्म, देवी देवताओं की उपासना करना, कर्मकांड। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना लेकिन भौतिक लाभ के लिए, और तीसरा है शुद्ध तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो अभी हम भले ही दूसरे श्रेणी में हों, लेकिन तीसरे श्रेणी की ओर हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है, यही सबसे ऊंचा धर्म है। अन्य सारे जो धर्म हैं वो निम्न श्रेणी के धर्म बताए जाते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो तो भक्ति रथोक्षजे अहैतुकी अप्रतहिता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि मनुष्य जाति के लिए सबसे ऊंचा धर्म है वो धर्म जिससे भगवान श्री हरि के प्रति अहैतुकी अप्रतहिता प्रेम जागृत हो। अहैतुकी मतलब बिना कोई भौतिक कामना से, अप्रतहिता मतलब बिना कोई रुकावट के। तो ऐसे भक्ति को प्राप्त करना ये सबसे ऊंचा धर्म है, या ऐसे कार्यों को करना जिनसे कि ऐसे अवस्था की प्राप्ति हो सके, ये भी ऊंचा धर्म माना जाता है। तो इस प्रकार से ये धर्म, इसको भागवत धर्म कहते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। और दूसरे धर्म, ये सबसे ऊंचे धर्म को छोड़कर जो भी अन्य धर्म है, श्रीमद् भागवत में इसे धोखेबाजी बताया गया है। बहुत शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग किया है शास्त्र में, और कब? श्रीमद् भागवत के दूसरे ही श्लोक में। ऐसा नहीं कि कहीं बीच में, कहीं 18,000 श्लोकों के बीच में, कोई 14,000वां श्लोक में, दूसरे श्लोक में फटाक करके वेद व्यास जी ने हमको बता दिया है कि केवल कृष्ण भक्ति ही एकमात्र चीज है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोनमूलनम। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सदो हृदि अवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। वेदव्यास जी बताते हैं कि अन्य जो धर्म है जो कि भागवत धर्म से मिलते नहीं हैं, जो जिनमें शुद्ध सेवा नहीं है भगवान श्री हरि की, वो उनको ये भागवत पुराण जो है वो त्याग कर देता है, उसको नकार देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है ये भागवत पुराण। भागवत पुराण में ऐसे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रोज्जित कैतव धर्म, ऐसे कैतव धर्म को प्रोज्जित निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? ये जो सबसे ऊंचा धर्म है किन लोगों के लिए है? निर्मत्सराणाम, जो ईर्ष्या की भावना से मुक्त हो गए हैं। इसलिए हम देखते हैं कृष्ण भक्त ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, लेकिन देवता के भक्त ईर्ष्या से कभी मुक्त नहीं होते हैं। ईर्ष्या उनकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देवता खुद ईर्ष्या से मुक्त नहीं है, तो देवताओं के भक्त कैसे ईर्ष्या से मुक्त होंगे? श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि एक देवता दूसरे देवता से घबराता है, ईर्ष्या करता है कि उसको भोग मिल गया, मुझे नहीं मिला। अगर कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उनकी प्रति ईर्ष्या करते हैं, उनको गिराने का प्रयास करते हैं। भागवत में बताया जाता है कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है या तपस्या करता है, तो कई ऐसे देवता हैं जो उनको गिराने का प्रयास करते हैं, उनके तपस्या से गिराने का, उनका पतन कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भक्त हैं लेकिन फिर भी ईर्ष्या है। जैसे हम देखते हैं भक्त समाज में भी कभी कभी हमारे हृदय में ईर्ष्या जागृत हो सकती है। अरे ये भक्त मेरे से आगे बढ़ गया, मेरे बाद में आया, लेकिन देखो कितने जल्दी से आगे प्रगति कर ली उसने। उसने तो 16 माला कर लिए और मैं अभी तक 4 माला में अटका हुआ हूं। तो हृदय में ईर्ष्या होती है। तो उसी प्रकार से देवतागण भी भक्त है लेकिन फिर भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। इसलिए ईर्ष्या जो है ये माया का आखिरी जाल है, सबसे कठिन, सबसे कठिन। काम से आदमी मुक्त हो सकता है, लोभ से मुक्त हो सकता है, क्रोध से मुक्त हो सकता है, भ्रम से मुक्त हो सकता है, लेकिन ईर्ष्या से मुक्त होना बहुत कठिन है। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, सताम एक वो संत, वो साधु जो भक्त हैं, जो ईर्ष्या से मुक्त हैं, उनके लिए है ये भागवत पुराण, ये भागवत धर्म। अगर हम विचार करें, हम तो निर्मत्सर नहीं है, हम तो फिर हम कैसे पढ़ना, हमें हम क्यों पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत? श्रीमद् भागवत ही भगवान का एक अवतार है, साहित्य रूप में अवतार है, इसलिए श्रीमद् भागवत ही बड़ा कृपालु है हमारे ऊपर। देखते हैं, ठीक है निर्मत्सर नहीं हो तुम, लेकिन बनना चाहते हो ना, ठीक है तो आओ बैठो। हालांकि हम पूरी तरह से निर्मत्सर आराम नहीं है, फिर भी अगर इस मार्ग का अनुशीलन हम करेंगे तो फिर धीरे धीरे से हम निर्मत्सर बन सकते हैं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, अंदर बिल्ली गई, देखो अंदर मंदिर खराब कर देगी, पशुओं को मंदिर के अंदर आना मना है, और जो पशु जैसे मनुष्य हैं उनको भी आना मना होता है। इसलिए सबको मनुष्य बनना चाहिए, सबको हरिनाम लेना चाहिए। तो इसलिए वेद व्यास जी बताते हैं कि ये भागवत पुराण ये महामुनि वेद व्यास जी ने की है, और किम वा पर ही, और दूसरे शास्त्र की क्या आवश्यकता है। इसलिए ये भागवत पुराण, ये भगवत धर्म जो है, कृष्ण भक्ति एकमात्र हमारे लिए काफी है। हमें और किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। केवल हम कृष्ण भक्ति करते रहें, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है कि हम श्री कृष्ण की सेवा करें, और ऐसी सेवा करने से क्या होता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे भौतिक उपाधियों से हम मुक्त हो जाते हैं। तत्परत्वेन निर्मलम, सारी इंद्रियां सारा हृदय निर्मल हो जाता है पूरी तरह से। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, हमारी इंद्रियों को ऋषिकों को, ऋषिकों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाने से। कृष्ण का और एक नाम है ऋषिकेश, तो ऋषिकों को ऋषिकेश की सेवा में लगाने से ये फल मिलता है, हृदय का शुद्धिकरण मिलता है, हो जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर सुचिहि। ये मंत्र हम भगवान की सेवा में हमेशा बोलते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा में अंदर प्रवेश करने के पहले, कि चाहे हम पवित्र हों अपवित्र हों, चाहे हम किसी भी अवस्था से गुजरे क्यों न हो, अगर हम भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं तो हम शुद्ध बन जाते हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से ही हृदय शुद्ध हो जाता है, हम आध्यात्मिक स्तर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शुद्ध हैं। लेकिन देवताओं की सेवा करने से क्या होता है, हृदय में जो काम है वो और भी बढ़ जाता है, काम वासना बढ़ते रहती है। तो देखिए कितना अंतर, देवताओं की पूजा करने से काम वासना भौतिक भावना बढ़ती है, कृष्ण की पूजा करने से भौतिक भावना काम वासनाएं मिट जाती हैं। इसलिए श्लोक में बताया गया है, कामैस्तैस्तै हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। इसलिए काम वासना से काम वासना के वश में आकर ये लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, हृतज्ञान अपने बुद्धि खो बैठते हैं। काम वासना के वश में पड़ना इसका मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये छह जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जब कोई व्यक्ति इन छह के वश में आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए जो भी देवताओं के शरण में जाते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। नते विदु स्वार्थ कथिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरथ मानिना, संसार के भोग को ही प्रमुख मानते हैं और देवताओं को पूजनीय मानते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण के पास नहीं जाते हैं इसलिए बारंबार उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में फिरना पड़ता है, घूमना पड़ता है। श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति विश्वास नहीं है, कृष्ण भक्ति में आने के बाद में भी देवताओं के प्रति आसक्ति रखते हैं, मन में संशय रखते हैं कि देवताओं की भक्ति छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में हम परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मेरे शरण में, केवल मेरे शरण में आना होगा तुम्हें। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहता है अकेले मेरे शरण में आओ, अपनी भक्ति को इधर उधर मत करो, केवल मेरे शरण में। भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं, लेकिन देवताओं की सेवा को भक्ति नहीं कहते। भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति, देवताओं की सेवा को कभी भक्ति नहीं कहते हैं। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। नौवे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जिसके हृदय में ये श्रद्धा नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरी भक्ति क्या चीज है, उसे फिर से ये संसार में लौट कर आना पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमने, बारम्बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारम्बार एक माँ के गर्भ में जन्म लेना आना, जन्म लेना मर जाना, ये चक्कर चलता रहेगा। इसलिए भक्त क्या कहता है, मुझे देवी देवताओं से कुछ नहीं लेना देना, दूर से सम्मान करेंगे, हरि बोल हरे कृष्ण कहेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, लेकिन शरण किसके जाएंगे, श्री कृष्ण। यह संसार है बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। यह संसार बड़ा कठिन है, बहुत एक कठिन जगह है ये, और इसको पार करने का उपाय एकमात्र आपका शरण ही है। इसलिए हे मुरारी, आप मुझे यहाँ से पार करा दीजिए। तो भगवान के शरण लेने का सबसे प्रमुख और आसान तरीका है उनके पवित्र नामों का जाप और कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कौन को कब चुना जाता है, कौन से युग में? अब ऐसा है कि ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है ना, ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं। एक मनु के जीवन की अवधि को एक मन्वंतर कहते हैं। तो प्रत्येक मन्वंतर में अलग अलग देवता चुने जाते हैं। सप्तर्षि होते हैं, देवता होते हैं, मनु, ये सारे पद होते हैं। तो इन पदों के लिए योग्य व्यक्ति चुने जाते हैं हरेक मन्वंतर में। ये 7वां मन्वंतर चल रहा है ब्रह्मा जी के इस दिवस में। मतलब ब्रह्मा जी के इस दिवस में अभी तक 7 ग्रुप हो चुके हैं देवताओं के। पहले स्वयंभू मन्वंतर था, तो उनमें देवी देवता अलग कोई आत्मा थे, जीवात्मा, जिनको वो पद मिला था। सप्त ऋषि भी अलग थे, स्वयंभू मनु, फिर आए स्वारोचिष मनु, उत्तम, राइवत, तामस, चक्षुष, ये सारे मनु हो गए। अभी वैवस्वत मनु, विवस्वान के पुत्र। तो वैवस्वत मनु श्राद्ध देव उनका नाम है, ये उनका मन्वंतर है। तो अभी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर, और जो सूर्य देव है उनका नाम है विवस्वान। इस प्रकार से ये फला जो व्यक्ति है उनको ये देवताओं का पद मिला है। अभी अगले मन्वंतर में और कोई देवता बनेंगे, और कोई सप्तऋषि बनेंगे। तो ये मन्वंतर हर मन्वंतर में ये बदलते रहता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? यहाँ था कि प्रवचन में ये बताया जाता है कि भक्ति में भक्तों के संग में भी कभी कभी ईर्ष्या की भावना होती है कि वो 16 माला का मेरे से जल्दी पहुंच गए, मैं 4 माला करता हूँ। तो अगर शुद्ध भावना से हम सोचें कि अरे उसने 16 माला कर ली, हमें भी करना चाहिए, तो क्या ये ठीक है या नहीं? ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर दूसरे भक्तों की सेवा से, भक्ति से हम प्रेरणा ले रहे हैं और हम वास्तव में हृदय में देख रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है कि ये इतनी अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, तो ये बात बहुत अच्छा है। इस प्रकार से परस्पर भक्तों को एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए। ये संसार में नियम होता है कि हम दूसरों को नीचे खींचना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में नियम बिल्कुल उल्टा है। हम भक्तों को और ऊपर करना चाहते हैं। पहले आपकी भावना यहाँ होती है भक्तों के समाज में, लेकिन बाहर के समाज में पहले हम, और दुनिया के लिए फिर कुछ रहे तो रहे, लेकिन पहला मैं हूँ, मेरा नंबर पहला होना चाहिए। लेकिन भक्तों के समाज में क्या होना चाहिए, पहले सब जाने दीजिए, मैं उनकी सेवा करूंगा, सेवा करता रहूंगा, ये भावना है भक्त की। तो ऐसी भावना से अगर हम करेंगे भक्ति तो वो अच्छा है। पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है, तो बार बार पढ़ते रहने से क्या ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं? पहली बात है कि समझ तो आएगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि 10%, 20%, 30% समझ में नहीं आए, लेकिन बाकी तो हम समझ सकते हैं। तो जो समझते हैं उससे हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, निष्ठा बढ़ जाती है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी बात को समझे नहीं भी समझे तो फिर भी ये ब्रह्म वाक्य है, श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को नित्य नियम से पढ़ते रहने से, भागवत की सेवा ऐसे करने से हमारे हृदय में ये जो मत्सर की, ये जो ईर्ष्या की भावना है, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए हम भागवत क्लास के पहले हर रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्ति भागवतों की सेवा करना। ऐसा सब करने से हमारे हृदय में नैष्ठिक की भक्ति जागृत होगी, जिससे हमारे हृदय में जो ईर्ष्या की भावना है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और कोई आखिरी प्रश्न? हाँ, पीछे। देवताओं का शरीर कौन से तत्वों से बना हुआ होता है? देवताओं का शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ होता है जो कि जिनसे हमारा शरीर बना हुआ होता है, पंच महाभूतों से। भूमिरापन लवयु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये भौतिक प्रकृति के पदार्थों से ही बना हुआ है, क्योंकि वो भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है, वो भी, उनका भी भौतिक शरीर है, हमारा भी भौतिक शरीर है। लेकिन फर्क एक है कि जिन तत्वों से उनका शरीर बना हुआ होता है वो अति सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे आंखों से, इन भौतिक आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। पृथ्वी है, लेकिन वहां की पृथ्वी इतनी सूक्ष्म है कि वो हमारे दृष्टि के लिए अदृश्य है, वो हम देख नहीं सकते उनको। उसी प्रकार से यहां जल है वो स्थूल है, लेकिन वहां का जल बहुत सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार से ये सारे आठ तत्व जो हैं उनके शरीर में भी हैं, लेकिन बहुत फाइन सब्सटेंस जो बोलते हैं, द्रव्य, उनका जो सूक्ष्म द्रव्य होता है। इसीलिए वहां पे अति सुंदर देवताओं का स्वरूप अति सुंदर होता है, उनके शरीर भी ऐसे होते हैं बिल्कुल इंद्र तृप्ति के लिए बनाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास इंद्र तृप्ति के लिए। उनको सुबह उठ के ब्रश नहीं करना पड़ता, उनको स्नान नहीं करना पड़ता, टेलकम पाउडर लगाना नहीं पड़ता, उनको पसीना नहीं आता है, 24 घंटे उनके शरीर से ऐसा सुगंध आता है मानो कि कोई बगीचा कोई उनके ऊपर हो, फूलों का बगीचा हो उनके ऊपर। और दिखने में बड़े सुंदर जन्म लेते हैं तो युवावस्था में, एक गुलाब के पत्तों के शैया पे जन्म लेते हैं। हमारे जैसे यहाँ मैटरनिटी वार्ड में नहीं जन्म लेते हैं, रोते रोते नहीं आते हैं, और उनको बुढ़ापा नहीं होता है, वैसे ही वैसे उनका पतन हो जाता है, पृथ्वी लोक में जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका शरीर भी अति सुंदर, शक्तिशाली, तेज बुद्धि सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी ईर्ष्या की भावना रहती है, भोग की भावना रहती है। ठीक है, और प्रश्न? प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन के बाहर नहीं जाते और चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, तो ये कैसे? गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी रहते हैं। जिस प्रकार से राधा कृष्ण एक साथ रहते हैं वैसे चैतन्य महाप्रभु भी हैं नवद्वीप में। गोलोक वृंदावन जो लोक है, उस लोक में गोलोक है, द्वारका है, मथुरा है, अयोध्या है और नवद्वीप भी है। जैसे कभी कभी किताबों में अपेंडिक्स रहता है ना, अंत में थोड़े स्पेशल थोड़े सेक्शन होते हैं किताब में, मेन किताब नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कोड लगाते हैं, तो वैसे माया वो अयोध्या होता है, अयोध्या, नवद्वीप, मथुरा, द्वारका, सब वहां गोलोक में आ जाते हैं। तो वहां चैतन्य महाप्रभु भी हैं। चैतन्य, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी नवद्वीप को नहीं छोड़ते। वो नवद्वीप भी वहां भगवान के धाम में है, गोलोक वृंदावन में, लेकिन नहीं छोड़ते तो क्या करते, खुद नवद्वीप लेकर ही आते हैं। जैसे श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन को साथ में लेकर ही आते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी जब अवतीर्ण होते हैं तो नवद्वीप को साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न, श्री कृष्ण की भक्ति में और उनके जो अलग अलग अवतार हैं उनके भक्ति में क्या फर्क है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व, फर्क है भी और नहीं भी? नहीं, क्योंकि सारे अवतार विष्णु तत्व हैं, कृष्ण के समान हैं, तो उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति करने से भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं और हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अंतर इसमें है कि केवल कृष्ण की भक्ति करने से हम गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं और अन्य अवतारों की भक्ति करने से हम वैकुंठ लोकों में जाते हैं, अर्थात अन्य जो भगवान के धाम में लोक हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकते। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.